नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को दी मंजूरी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं वहीं राज्य कर्मी के तौर पर होंगे पदस्थापित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के पंचायतों में 6,500 से अधिक खेल मैदान निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। पटना में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने कहा, 15 फरवरी तक 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं वहीं राज्य कर्मी के तौर पर पदस्थापित होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य के 5,671 ग्राम पंचायतों में 6,500 से अधिक खेल मैदानों के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री श्रवण कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के तहत हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक ग्रामीण सड़कों से जुड़ी अपनी शिकायत को सीधे विभाग तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज परिवहन विभाग की 43 डीलक्स बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों में सस्ती सुलभ सुगम और सुरक्षित परिवहन सेवा लोगों को मिल सकेगी। पटना में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आज विभिन्न उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों का स्वागत किया। श्री चौधरी ने उन्हें राज्य में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।
हम लोगों का टारगेट है कि इस बार बिहार में लाखों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे बिहार भी बढ़े और देश भी श्रेष्ठ बनने का काम करे। इसमें आप सभी लोग का सहयोग मिले। इस पूरे इन्वेस्टमेंट समिट में मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि ये गौरवशाली इतिहास बनाने का समय आया। अभी तक तो मगध, जिसको बिहार या पाटलिपुत्र आप जानते हैं, इसका एक इतिहास रहा है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो। और इस भारत का स्वर्णिम काल देने वाला कोई समय था तो यही मगध था और यही पाटलिपुत्र था।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बन रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से राज्य में वाणिज्य और व्यापार के विकास का मार्ग खुल रहा है।
आज बड़े बड़े एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड के माध्यम से आज आपको 4 लेन 6 लेन 8 लेन, अभी पूर्व की वक्ताओं ने कहा कि आज आवागमन की गति को भी हम लोगों ने दुगना किया है। आज हर क्षेत्र के अंदर हर जो इंडस्ट्रीज के लिए आपको अनुकूल परिस्थिति है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं।
उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि राज्य सरकार की सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति में बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे उद्योगपतियों को विशेष लाभ मिल रहा है।
ये हमारा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, इसकी तारीफ सब लोग करते हैं। ये इसने ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दिया है। टोटली इसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिम्मेदारी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो आपको क्लियरेंसेज लेके आए, आपको स्टेज 1 क्लियरेंस हो, चाहे आपको डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेज हो या फिर आपको किसी फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा।
श्रीमती प्रेसी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों और निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण नीति बनाई है, जिससे राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है।
बिहार एक नई गाथा लिखने जा रहा है, लिख रहा है। ये है बिहार फ्रॉम द लैंड ऑफ हिस्ट्री टू द लैंड ऑफ इंडस्ट्री। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हम कर रहे हैं वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमारी सरकार ने हर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। हमारी जो पॉलिसीज है वो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक ओवरआर्किंग अम्ब्रेला है, और इसके अंतर्गत ये कई सेक्टोरल पॉलिसीज भी आए हैं। इसमें हमारे कई हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स भी हैं।
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार से कोसी मेची लिंक परियोजना समेत राज्य में बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री चौधरी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की 38वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए यह मांग की है। श्री चौधरी इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर बिहार की नदी जोड़ परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की अपील भी की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। श्री पासवान ने पार्टी की विभिन्न जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। श्री पासवान ने कहा कि जल्द ही नई कमिटी का गठन किया जाएगा। पटना के दानापुर स्थित न्यू KLP मैदान और चांदमारी मैदान में कल 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। भर्ती रैली की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर किए जा रहे उपायों का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एन सरवन कुमार ने कहा है कि प्रदेश में धान अधिप्राप्ति का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पैक्सों के माध्यम से अब तक 4.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 फरवरी तक 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में अधिप्राप्ति का काम हम लोगों ने 1 नवंबर से प्रारंभ कर दिए थे। कुछ दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और अभी तक लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान हम लोगों ने ऑलरेडी अधिप्राप्ति में प्राप्त कर लिया है। पूरे राज्य में इस साल का टारगेट है जो 15 फरवरी तक हमें करना है वो 45 लाख मीट्रिक टन है और हमें उम्मीद है कि इस बार इसको हम लोग हासिल कर पाएंगे। इसमें हर पंचायत के जो पैक्स हैं और प्रखंड स्तर पर जो व्यापार मंडल हैं उनके स्तर पर अधिप्राप्ति का काम किया जा रहा है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ. एन सरवन कुमार से आकाशवाणी की पूरी बातचीत आप शनिवार 21 दिसंबर को संध्या 7:50 पर सामयिक चर्चा कार्यक्रम में सुन सकते हैं। नेपाल से सटे राज्य के सीमाई क्षेत्रों में आज सुबह 7:22 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल के चेमा में था। भूकंप की तीव्रता रिश्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है। राज्य के अधिकतर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पूर्वा हवा का प्रभाव कम होने के कारण अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान गया, औरंगाबाद और भभुआ समेत राज्य के दक्षिणी भागों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। ओडिशा के कटक में खेले गए अंडर-16 मेंस क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को पारी और 356 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। बिहार के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने मिजोरम की दूसरी पारी 125 रनों पर ही सिमट गई। बिहार ने पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज अनमोल कुमार के दोहरे शतक और कप्तान प्रीतम राज के शानदार 86 रन की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 515 रन बनाए थे। बिहार का अगला मुकाबला 22 दिसंबर से नागालैंड के खिलाफ खेला जाएगा। कटिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 लाख रुपए के इनामी अपराधी राकेश उर्फ छोटू को विदेशी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सुबोध सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। जहानाबाद की स्थानीय अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन सभी पर 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 65 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक देसी पिस्तौल के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले में किसानों ने पुलिस के अमानवीय रवैये के खिलाफ राटी चौक से थाना चौक तक ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों का आरोप है कि पुलिस अनावश्यक रूप से किसानों के ट्रैक्टर का चालान काट रही है। मधुबनी के जयनगर में भारतीय रेलवे यूनियन के चुनाव में ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों की जीत पर उन्हें सम्मानित किया गया। यूनियन के दरभंगा शाखा के उपाध्यक्ष बैद्यनाथ भारती की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन हुआ। सुपौल में 3 दिवसीय वीर लौरित महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जीविका आईसीडीएस लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जिला कल्याण विभाग सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। पटना एम्स के गार्ड पर गोली चलाने के मामले में फरार अभियुक्त पिंकू यादव ने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पिंकू यादव राजद विधायक रीतलाल यादव का भाई है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर भैरोगंज मुख्य मार्ग पर मोतीपुर पुल के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा कुहासे के कारण हुआ है। इधर पटना के गर्दनी बाग में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को दी मंजूरी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं वहीं राज्य कर्मी के तौर पर होंगे पदस्थापित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की पंचायतों में 6,500 से अधिक खेल मैदान निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। पटना में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने कहा 15 फरवरी तक 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।